मैं कल ही आई ना, तो यहाँ अभी मेरे कपड़े नहीं हैं। कायरव ने मंगवाए थे, लेकिन गलती से यही कपड़े आ गए। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे इन्हें ही पहनना पड़ा। कायरव ने कहा था कि शाम तक मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, फिर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इनाया एक बार फिर मुस्कुराई। अगले ही पल मिसेज़ रायचंद की कड़क तलख आवाज़ वहाँ गूंजी और इनाया के मुस्कुराते लब सिमट गए। पहले तुम क्या और कैसे करती थी हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, और ना ही हम यहाँ तुम्हारे बहाने सुनने बैठे हैं। कायरव से शादी की है तुमने, अब तुम रायचंद खानदान की बहू हो, हमारे घर की समाज में इज्जत है। आज तक हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इस खानदान की रेप्यूटेशन खराब हो, और अब तुम्हें भी इसका ख्याल रखना होगा। अपने घर में तुम कैसे भी रहती हो, पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारा नाम अब रायचंद खानदान से जुड़ गया, सबकी नज़र तुम पर होगी, तुम्हें अपनी इमेज का खास ध्यान रखना होगा। अपनी मिडिल क्लास सोच और आदतों को अब बदलना होगा तुम्हें, खुद को इस हाई सोसाइटी के हिसाब से ढालना होगा। जाओ, जाकर ढंग के कपड़े पहनो, प्रेजेंटेबल बनकर आओ। उन्होंने ऑर्डर ही दिया था, साथ ही इनाया की इंसल्ट भी की थी, जिसे उसने मुस्कुराते हुए सह लिया और वापस चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। मिसेज रायचंद ने जब उसे देखा तो चौंक गई। इनाया ने कायरव की शर्ट पहनी हुई थी, वो ओवरसाइज शर्ट उसकी थाई तक आ रही थी, स्लीव्स को फोल्ड किया हुआ था, कंधे नीचे को लुढ़क रहे थे, खुले बाल उसकी पीठ और कंधों पर बिखरे थे। शर्ट के नीचे शॉर्ट पहने थे जो नज़र तक नहीं आ रहे थे। उसकी खुली टांगे बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, होंठ लिप ग्लॉस से चमक रहे थे। ज़्यादा कुछ उसने अब भी नहीं किया था, पर खूबसूरत इतनी लग रही थी कि कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकता था। मिसेज रायचंद कुछ कहती उससे पहले ही इनाया बोल पड़ी, अब आप नाराज़ मत होइएगा, मैंने बताया था ना, यहाँ मेरे और कपड़े नहीं हैं, इसलिए मैंने कायरव के कपड़े पहन लिए। आपकी हाई सोसाइटी में तो ये सब चलता है ना, सुबह सिया भी कुछ कुछ ऐसे ही कपड़े पहन कर आई थी। इनाया ने उन्हें कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा, जिससे मिसेज रायचंद चिढ़ गईं। बैठो। इनाया झट से उनके सामने बैठ गईं। वहाँ अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उस खामोशी को चीरते हुए मिसेज रायचंद की सख्त आवाज़ आई, तुमने कायरव से शादी क्यों की? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने साथ साथ बिताना चाहते हैं। जानती हो ना, कायरव रायचंद एम्पायर का वारिस है और तुम एक मामूली सी मिडिल क्लास लड़की। तुम कायरव की वाइफ और रायचंद खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हो, और तुमने ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ की है। एक बार फिर उनके कड़वे शब्द जैसे इनाया को नीचा दिखा रहे थे। जवाब में इनाया सौम्यता से मुस्कुराई। ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ, और कायरव मेरे लिए उस चांद जैसा है जिसे मैं दूर से देख तो सकती हूँ पर हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इनाया रुकी और ठीक से बैठते हुए संजीदगी से बोली, मैं ये भी जानती हूँ कि कायरव जिस पोजीशन पर है उसे मुझसे भी बेहतर लड़कियाँ मिल सकती थीं जो उसके क्लास और स्टेटस से मैच करती, जिसे आप आसानी से अपनी घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन आपके बेटे ने उन लड़कियों को ठुकरा कर मुझे चुना है। मैं उसके पास नहीं गई थी, वो आया था मेरे पास, उसने मुझे प्रपोज़ किया, मुझसे शादी करने का फ़ैसला उसका था, और वो जानता था कि आप कभी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद उसने हमारे रिश्ते को आपसे छुपाया और सीक्रेटली शादी की। अब मैं कोई मामूली लड़की नहीं जिसे कोई भी आकर नीचा दिखा दे, अब मैं मिसेस कायरव रायचंद हूँ। कायरव ने मुझे चुनकर मुझे आम से खास बनाया है, आपके बेटे की पसंद हूँ मैं, आप मेरी नहीं, कायरव की पसंद उसके प्यार की इंसल्ट कर रही हैं, जिसे शायद मैं तो हमारे रिश्ते और आपकी एज का लिहाज करने के लिए सुन भी लूँ, पर अगर कायरव को ये पता चला तो वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इनाया शातिर अंदाज में मुस्कुराई। उसका कॉन्फिडेंस देखकर मिसेज रायचंद हैरान रह गई। अगले ही पल गुस्से से बोली, तुमने जानबूझकर कायरव को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया ताकि उसका सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी बदल सको, वरना ये सब जो आज तुम्हें मिल रहा है इसकी औकात नहीं थी तुम्हारी। आपको क्या आपका बेटा बेवकूफ़ नज़र आता है, या कोई दूध पीता बच्चा है जो एक लॉलीपॉप दिखाकर मैं उसे बहला लूँगी? इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभालता है, रोज़ कितने ही लोगों से मिलता होगा, क्या उसे अब तक इंसानों की पहचान नहीं? आपको सच में लगता है कि मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की और वो फंस गया? मुझे नहीं पता था कि आप अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचती हैं, लेकिन मैं जिस कायरव को जानती हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि कौन सच में उससे प्यार करता है और कौन उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तभी तो उसने मिस मल्होत्रा को छोड़कर मुझे चुना। अगर उसे बहलाना इतना ही आसान होता तो आज यहाँ मैं नहीं, मिस सिया बैठी होती। इनाया रुकी और दिल जलाने वाली मुस्कान होठों पर बिखेरते हुए उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, वैसे तो मैं सफाई देने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन आपने मेरे प्यार और नियत पर सवाल उठाया है इसलिए बता देती हूँ। जब मुझे आपसे बेटे से प्यार हुआ तब मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, मैंने उसे अपने जैसा सिंपल इंसान समझकर ही प्यार किया था। जब मुझे उसकी असली पहचान पता चली तो उसी वक्त मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो ये मेरा लालच नहीं, कायरव की जिद है,
और ये बात कायरव ने खुद मीडिया के सामने कही थी। लेकिन शायद आपको आपके बेटे पर विश्वास भी नहीं, फिर मेरी बातों पर आप कैसे भरोसा करेंगी? तो आप जो सोचना चाहती हैं सोच सकती हैं। कायरव की जिंदगी से जाने का क्या लोगी? मिसेज रायचंद के इस सवाल पर इनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिसेज रायचंद ने उसे तीखी निगाहों से घूरा, तब जाकर इनाया ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। सॉरी, वो आपने बात ही ऐसी की कि मैं खुद को हंसने से रोक नहीं सकी। वैसे आपको पता है, मैं यही सोच रही थी कि ये डायलॉग तो जरूर आएगा और इंतजार कर रही थी कि आप ये बात कब कहेंगी। अभी तो आप बहुत हाई सोसाइटी वाली इज्जतदार लेडी बन रही थी, पर अभी आपने बिल्कुल ड्रामास की हाई सोसाइटी वाली टिपिकल मदर जैसे बिहेव किया। मैंने बहुत देखा है ये, लगता है आपने भी देखा होगा। तभी तो आपने सोचा कि मुझे पैसों का लालच देकर कायरव से दूर कर देंगी, पर अफसोस कि ऐसा होगा नहीं। इनाया अब एकदम से सीरियस हो गई। मैंने को पहले ही बता दिया था कि मैंने कायरव का नाम, दौलत, शोहरत के लालच में उससे शादी नहीं की है। अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला नॉर्मल लड़का होता तब भी मैं उसी से शादी करती, क्योंकि मैंने प्यार उससे किया है, उसके पैसे से नहीं। आपकी कोशिश अच्छी थी। अगर सच में मैं लालची होती और कायरव से मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा होता, तो आपके इस ऑफर का यूज करके कायरव की जिंदगी से दूर जाने के लिए इतनी कीमत मांगती कि मेरी आगे की पूरी लाइफ आराम से बीत जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, तो आप मुझे लालच देकर तो कायरव से दूर नहीं कर सकती। हम 2 करोड़ रुपए देंगे तुम्हें। हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम जहां कहोगी वहां तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट करवा देंगे। बस तुम्हें कायरव की लाइफ और इस शहर से इतना दूर जाना होगा कि तुम्हारी परछाई भी हमारे परिवार पर ना पड़े। मिसेज रायचंद की बात सुनकर इनाया एक बार फिर मुस्कुराई, जैसे उनकी बात का मजाक उड़ा रही हूँ। तो ये कीमत लगाई है आपने अपने बेटे की खुशियों की? वैसे डील काफी अच्छी है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मेरी नजरों में कायरव अनमोल है। आप पैसे क्या, पूरा रायचंद एम्पायर मेरे नाम कर दीजिए, अपना सब कुछ मुझे दे दीजिए, तब भी मैं कायरव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कोई कायरव की जिंदगी से निकाल सकता है तो वो खुद कायरव है, और वो ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
इनाया रुकी और संजीदगी से बोली, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए और आपको शायद मेरा बोलना पसंद भी ना आए, पर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप उम्र और रिश्ते दोनों में मुझसे बड़ी हैं। आप कायरव की माँ हैं, मुझसे पहले उसका रिश्ता आपसे जुड़ा है। शायद आप मुझसे ज्यादा उसे जानती होंगी और प्यार भी करती हूँ। आपको अपने बेटे की पसंद पर विश्वास होना चाहिए था। मुझे उसकी लाइफ से दूर करने की कोशिश करने की जगह आपको ये सोचना चाहिए था कि आपके बेटे की खुशी मुझसे जुड़ी है, वो मुझसे प्यार करता है, अपनी लाइफ मेरे साथ बिताना चाहता है। तो मुझे एक मौका दें और खुद डिसाइड करें कि मैं कायरव के लिए सही चॉइस हूं या नहीं। आपको मेरे बैकग्राउंड, अपने क्लास स्टेटस से पहले अपने बेटे की खुशी देखनी चाहिए थी, लेकिन शायद आपके लिए ये चीजें कायरव की खुशी से ज्यादा मायने रखती हैं। सॉरी टू से, लेकिन मैं आपके जैसी नहीं हूं। मेरे लिए कायरव इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, और मैं किसी कीमत पर उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने मुझसे प्यार किया है और मैं कभी उसके विश्वास को नहीं तोड़ूंगी। इसलिए आप दोबारा ऐसी कोशिशें करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इनाया अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई अपनी बातों के जाल में उलझी मिसेज रायचंद को, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो आगे क्या करने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड।